श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 57 और देखता हूँ अगर 58 का कर सकेंगे तो। यहाँ पे परिनिष्ठ भक्तों की साधना को समझाया जा रहा है आगे। परिनिष्ठ मतलब जिनका वर्णाश्रम में विश्वास नहीं है, भगवान की सीधी भक्ति में विश्वास है लेकिन वर्णाश्रम को डिस्टर्ब ना करने के कारण कदाचित नियमों का पालन करते हैं, कुछ नियमों का पालन नहीं करते हैं अगर वो भक्ति में अड़चन मारते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम् भव। अब हम शब्दार्थ को देखेंगे तो आप समझ, पहले ही प्रश्न किए जाएंगे, माइक पास में रखिए। पहला प्रश्न होगा दाशरथि प्रभु से। प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे, चेतसा का अर्थ है बुद्धि से और सर्व कर्माणि अर्थात समस्त प्रकार के कार्य, मई मतलब मुझसे और संन्यास से मतलब त्याग कर। तो यानी बुद्धि के द्वारा सभी कर्मों को मुझको मेरे प्रति त्यागने का अर्थ क्या है? यस, माइक पास में है, ऑन कीजिए, बोलिए, बताइए। कृष्ण को कर्म देने का मतलब क्या है? संन्यास ले लें हम लोग? हाँ बताइए, ऑन तो करिए, ऑन ही रहा उस वाले जगह देखिए।
मतलब सारे कर्मों को कृष्ण के लिए करना,
yes.
सोना उठना जगना जो भी कार्य है वो सारे कृष्ण के लिए।
हमने पिछले वाले में क्या सुना था, पिछला श्लोक क्या था मैं जब बोल रहा हूँ उसमें भी संन्यास था, सर्व कर्माणि करके, ठीक है ना? ओके, बहुत इजी है, मैं संन्यास। अच्छा, अब हमारा सेकंड प्रश्न का उत्तर देंगे हमारे अनुपम कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, तत्पर का अर्थ क्या है? मैं उसके बाद दूसरा प्रश्न करूंगा। मतपर करने से पहले तत्पर बताइए, तत्पर का अर्थ क्या होता है?
मतलब उस प्रोसेस में लगे रहना।
वेरी गुड, मन से, वचन से, कर्म से। और अब मत पर का मतलब क्या हुआ? मत मतलब तत् मतलब उसके, और मत मतलब मेरे, तो यानी मेरे में मेरे लगा रहता है, मन से, वचन से, कर्म से, कृष्ण में लगा रहता है, ठीक है। और ये शुद्ध भक्ति के कौन से शब्द का वर्णन करता है?
अनुशीलनम।
वेरी गुड। बुद्धि योगम उपाश्रित, बुद्धि योग का अर्थ क्या है? बुद्धि के द्वारा समझ ले कि वो कौन है, आप कौन है प्रभु जी?
मैं
आत्मा
हूँ, okay, दास हूं।
हाँ, आत्मा है भगवान के दास, इसलिए क्या करना चाहिए?
सेवा, भगवान की सेवा। हाँ, भगवान की सेवा।
केशव किसका दास है? केशव आप किसके दास है? केशव के केशव के केशव किसका दास है? केशव का, ठीक है, मतलब भगवान के दास है। तो इसलिए चाहे, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमसे कुछ गलती भी हो, अपराध भी हो, चाहे कुछ भी हो, किसकी सेवा करनी है? कृष्ण की, और किसी की नहीं। अच्छा ये बताइए कि क्या कोई व्यक्ति, अभी एक टफ प्रश्न है, क्या कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता है? माइक में, हाँ माइक में समझाइए, अच्छा प्रश्न है। यस,
डायरेक्टली इनडायरेक्टली करेगा,
समझाइए आगे। मान लीजिए मैं भगवान का हरे कृष्ण नहीं करता,
जब वो माया की सेवा कर रहा है तो एक तरह से कृष्ण को ही
तो
जा रहा
है। माया कैसे जा रहा है? माया की सेवा कर रहा है।
जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कि अगर हम किसी जगह पे जा रहे हैं, हाँ? किसी फ्लाइट से जा रहे हैं, तो जो पैसा जा रहा है वो एयरलाइंस को ही जा रहा है, लेकिन हम डेस्टिनेशन हमारी वो है। तो इसी तरह से हम कृष्ण, माया की जब सेवा कर रहे हैं तो अंतोगत वो कृष्ण के ही पास पहुंचती है।
एक उदाहरण जेल के संबंध में क्या देंगे, जरा उनको माइक दीजिए। माइक देखिए, चल क्यों नहीं रहा, चल तो रहा था अभी, दूसरा वाला माइक देखिए चला के, वो उसको आगे, उसका पेन इन अंदर कीजिए, पेन बाहर आ गए शायद, चल रहा था, बोलिए, ऑन तो करो।
भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि अब विधि पूर्वक मेरी ही सेवा।
नहीं नहीं नहीं, वो देवताओं के संबंध में है। अगर जेल में कोई है तो उसका भरण पोषण कौन कर रहा है? ये वाला माइक इधर यूज कीजिए, वाला माइक उधर यूज कीजिए, छोटा था इसका, खिंच जाता है, ये वाला उधर दीजिए, इस तरफ दीजिए। हाँ, अनंत कृष्ण प्रभु समझाएंगे। देखिये भाई, मत पर हक का बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंस्पिरेशनल बात है, वो वहां तक नहीं पहुंचेगा। हाँ चलिए, खिंच जाएगा। हाँ बोलिए।
तो प्रश्न है कि कैसे माया मायाबद्ध होकर भी भगवान जीव 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 भगवान का ही सेवा करता है, और भगवान की जब भक्ति योग का प्रोसेस में भी भगवान की सेवा करता है।
हाँ।
एक तो वो श्लोक ही है कि कोई माने कोई न माने, सभी
केहो माने केहो न माए सवाई तमार दास, अर्थात।
और एक और ये भी,
हाँ सही कह रहे हैं, ये श्लोक है, केहो माने केहो न माने सवाई तमार दास। आगे वाला थोड़ा श्लोक भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें लिखा है कि जो कृष्ण की सेवा नहीं करता उसका हो जाता है सर्वनाश, ऐसे करके बोलते। यानी कि बहुत सिंपल बात है, जेल में रोटी कौन देता है कैदियों को? सरकार देती है। तो सरकारी नौकरी में है वो, नहीं आप ये नहीं कह सकते नहीं, लेकिन क्योंकि विद्रोह किया है इसलिए जो सुविधाएं बहुत कम है, और जो आईएएस ऑफिसर है वो किसकी नौकरी कर रहा है, सरकार की, सुविधा में बहुत अंतर है।
माया बलपूर्वक नियोजित करेंगी और
हाँ बहुत अच्छा आपने बात बोला है कि माया बलपूर्वक कृष्ण की सेवा में नियोजित करेगी, लेकिन वो अलग तरह से करेगी, पिटाई करेगी, बहुत सीमित सुविधाएं देंगी, लेकिन स्वेच्छा से कृष्ण को समर्पित करते हैं तो हम लोग खुश हो जाएंगे और हम भी खुश होंगे भगवान भी खुश होंगे। तो कह रहे हैं मतपरा, और एक मतपरा का अर्थ और भी है, भगवान को ही परम लक्ष्य मानता है कि जीवन का लक्ष्य है मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी। मैं ये बात क्यों बोल रहा था मतपरा वाली, क्योंकि अगर कुछ भक्ति में गलती होती है तो क्या हमें भक्ति छोड़ देनी चाहिए? नहीं, क्योंकि तब भी हम कृष्ण की ही सेवा करेंगे माया के थ्रू, ये बात दिमाग में घुसा लेना चाहिए। और दूसरे भक्तों के प्रति भी यही बर्ताव होना चाहिए, अगर वो गलती कर दें तो उन्हें भक्ति से तुरंत निकाल देना चाहिए ना, क्योंकि आप उनको कृष्ण की सेवा से अलग नहीं कर सकते, जैसे इस रोशनी को आप इस बल्ब से अलग नहीं कर सकते। तो इस विश्वास के संग कि मैं कृष्ण का दास हूं, यह आधार है परिनिष्ठ भक्त का, मैं कृष्ण का दास हूं, मेरा अस्तित्व कृष्ण की सेवा के लिए है, चाहे गलती हो चाहे अपराध हो चाहे कुछ हो, मैं कृष्ण की सेवा नहीं त्यागूंगा। जैसे एक बार महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी नहीं थे, करमचंद गांधी थे, और उनकी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी से लड़ाई हो गई। आपको सुना भाई, बहुत अच्छा कथा है। तो कस्तूरबा गांधी को बोला तुम निकल जाओ घर से, तो उस वक्त माताएं तलाक नहीं दिया करती थी, तो बाहर निकल करके दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो गई। और फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद नॉक किया, तो उन्हें बोला कि गांधी जी बोले क्यों गई क्यों नहीं, तो उन्हें बोला मैं कहाँ जाऊं, आप मेरे पति हैं, स्वामी हैं, आपको छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ। उसी प्रकार से भक्त की भावना होती है, चाहे मुझसे अपराध हो चाहे कुछ भी हो, मैं कृष्ण की सेवा नहीं त्यागूंगा। ठीक है, तो यानी कि बुद्धि योगम उपाश्रता मतलब कृष्ण के दास हैं हम, चाहे गलती भी हो जीवन में कठिनाई भी हो हमें कृष्ण की सेवा करनी है। मत चित्ता का अर्थ बहुत सिंपल है, चित्त को मुझ में लगाए रखो। सततम मतलब हमेशा। अनुवाद, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ये इंटरेस्टिंग है, प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि भगवान के भक्त भगवान से असिस्टेंस नहीं लेते हैं। जैसे आप मेरी मदद कर रहे थे यहां पे माइक अप सेटअप करने में, तो आप मुझे असिस्ट कर रहे थे, ये नहीं है। निर्भर होना और असिस्टेंस ग्रहण करना, उनमें अंतर है। तो ऐसा नहीं कि हमारा कुछ कार्य पूरा नहीं हो रहा है तो हम भगवान से मदद मांग रहे हैं। कोई भी कार्य करने के लिए पूरी तरह भगवान पे आश्रित है ना, ये बात, आपके बिना तो कार्य होगा ही नहीं। याद है ना पांच कारण थे, आज मैं एक भक्त को डांटने वाला था, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया वैसे क्यों नहीं किया, लेकिन मेरे मन में याद आ गया पांचवा कारण कृष्ण होते हैं। तो फिर मुझे ऑल दो मेरा मन बोला था नहीं डांटो उसको, डांटो उसकी गलती है, कैसी गलती है, फिर मेरा बुद्धि बोल रही थी नहीं भाई पांचवा कारण कृष्ण है, कृष्ण है, वो अकेले नहीं है इस कार्य को करने के लिए। तो इस तरह मैंने अपने गुस्से को कुछ हद तक संयत कर लिया। नहीं सही में हम सोचते हैं कि ये भक्त गलती कर रहा है वो भक्ति गलती कर रहा है, क्योंकि इससे हम भक्तों के प्रति अपराध से बच जाते हैं। मुख्य कारण कृष्ण है, और मुझे लग रहा था कि मैं क्लास देने से पहले भगवान का प्रणाम नहीं कर पाया इसलिए गड़बड़ हुई। आपको याद है एक बार हम लोग ने भगवान का मंगलाचरण नहीं बोला था तो लाइट चलेगी ना, क्या क्या परेशानी हो गई थी। तो ये भगवान दिखाते हैं कि तुम मुझ पर, ठीक है क्लास तो हो गया लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन पॉइंट इज दिस, अपने हर कार्य के लिए चाहे हम प्रचार कर रहे हों चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे साधना कर रहे हैं, हम भगवान पर निर्भर हैं, ये विश्वास होना चाहिए और ये हम समझते भी हैं बुद्धि के द्वारा। मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो अर्थात जैसा भगवान बता रहे हैं वैसे करो, प्रभुपाद इस बात को समझाएंगे। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो, मतलब सचेत रहो मतलब मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण का अंश हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, इस भावना से युक्त रहना चाहिए। टीका देखिएगा, टीका को देखेगी फोन में, यहाँ पे परिनिष्ठ भक्तों के गुणों का ही वर्णन चल रहा है। पिछले वाले श्लोक में बताया था 56वें, अब आगे पढ़ रहे हैं। क्योंकि उसका यह स्वभाव ही है, क्या स्वभाव है, अपने कर्मों को कृष्ण को देना, चित्त को भगवान में लगाए रखना, भगवान के प्रति मत पर तत्परता होना, ये सारा स्वभाव परिनिष्ठ भक्त का होता है। उसका विश्वास वर्णाश्रम पे नहीं है कि वर्णाश्रम के द्वारा उद्धार होगा, ना। एक बात ध्यान देना चाहिए, शायद आप नहीं दे पाए होंगे, यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तद्। यज्ञ दान तपह कर्म पावनानि मनीषिणाम, स्पेशली किन लोगों के लिए बोला जा रहा है, सनिष्ठ भक्तों का जिनका वर्णाश्रम पे बहुत श्रद्धा है, भगवान के भक्त इन्हीं का, अगर आप भगवान के भक्तों का अर्थ क्या है, यही यज्ञ है जो है, दान है, तपस्या, जो कुछ भी कर्म है वह कृष्ण के लिए करते हैं, केवल शुद्धिकरण के लिए नहीं करते, कृष्ण को प्रसन्नता का प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए करते हैं। आप थोड़ा सूक्ष्म अंतर समझ पा रहे हो शायद। तो वह अपने समस्त नियत कर्मों को मुझको समर्पित करता है संन्यास, ये मैं चर्चा कर चुका हूं। मैं जो कि उसका स्वामी हूं, बुद्धि योग के द्वारा समझता है कृष्ण मेरे स्वामी हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी है, और कर्ता की चेतना से रहित होते हुए, हमने कई बार चर्चा कर चुके हैं, चेतसा का अर्थ है कि मैं करने वाला हूं इसलिए फलों को मैं भोगूंगा, इससे मुक्त रहता है, और मुझे ही एकमात्र लक्ष्य मानते हुए मत परह, ये भी मैंने समझा दिया था अभी कि जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण, पार्थ कृष्ण प्रभु। मत परह का अर्थ क्या है बिना देखिए बताइए, एकमात्र लक्ष्य कृष्ण है, उनको संतुष्ट करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य, ठीक है। मुझ में ही आश्रय ग्रहण करके, भक्ति योग का आश्रय ग्रहण करके और चित्त को सदा ही मुझ में एकाग्र करके, यद्यपि अपने कार्य करते हुए रह सकते हो, कहने का अर्थ है कि जगत के कार्य करते हुए भी उसका चित्त कृष्ण में रहता है, जैसे एक स्त्री का, बहुत सारी स्त्री कार्य कर सकती है, माता बहुत सारे कार्य करती है लेकिन अपने बच्चे और पति का ध्यान रखते हुए करती है, उनके लिए कर रही हूं, बहुत सिंपल से बात है। तो उसी प्रकार से भगवान के भक्त विभिन्न कार्यों में रह सकते हैं, लेकिन उनका स्पेशली परिनिष्ठों का कि यह सब मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं। अब मेरा एक प्रश्न है, क्या कोई गृहस्थ व्यक्ति परिनिष्ठ हो सकता है? देखा जाए तो परिनिष्ठ गृहस्थों के लिए ही अप्लाई होगा, क्योंकि ब्रह्मचारी और सन्यासी वो तो उनको को मतलब ही नहीं दुनिया से, वो तो केवल भक्ति में लगे रह सकते हैं। तो जरा समझाइए कि क्या, क्योंकि परिनिष्ठ भक्त भी अनन्य भक्त होते हैं, परिनिष्ठ और निरपेक्ष, तो परिनिष्ठ भक्त गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कैसे अनन्य भक्ति कर सकता है? तो जरा समझाइए भाई, पत्नी का भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, तो कैसे कर सकता है, समझाइए। जिनके पास ही माइक है, अनुपम कृष्ण प्रभु बताइए।
वो सब कुछ इस तरह से सोच के करते हैं कि ये सब कृष्ण का है, कृष्ण को केंद्र में रखते हैं, जैसे अपने पुत्र है तो पुत्र की, पुत्र को पढ़ाते हैं सबको ताकि आगे जाके अच्छा भक्त बने, प्रचार में लगे, और भगवान को भोग लगाते हैं और फिर वो जो उनका प्रसाद रूप में आता है वो सब
वेरी nice. इस तरह से, यानी कि जो पति हैं वो अभी काम करने जा रहे हैं तो उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो बच्चे हैं, पत्नी है, उन सबको कृष्ण भक्ति करने का वातावरण मिले। और ये बहुत प्रैक्टिकल होता है जब सुबह शाम दोनों समय कृष्ण कथा, हरि कथा, हरि नाम हो। प्रभुपाद जी इसको आप लोगों को याद हो, हमने यहाँ पे शायद हमने नहीं पढ़ाया लेकिन 13वें अध्याय में इस प्रकार से बताते हैं, पढ़ा होगा अगर आपने अलग से, तो फॉर्मूला बताते हैं गृहस्थ आश्रम में, सुबह पूरा मॉर्निंग प्रणाम होना चाहिए और उसका शाम को फिर इवनिंग प्रणाम होना चाहिए, आरती हो, कीर्तन हो, कथा हो, गीता हो, गीता भगवत प्रवचन हो, इस उद्देश्य से गृहस्थ आश्रम भक्ति में प्रवेश करना चाहिए। और देखिए कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में मान लीजिए ट्रेनिंग प्राप्त करता है तो सहज रूप से उसकी आदत रहेगी, जब वो वर्णाश्रम मतलब सॉरी गृहस्थ में जाएगा तो भी उसकी यही आदत रहेगी, सुबह पूरा मॉर्निंग प्रणाम करना है, शाम को क्लास करना है, कथा करना है, ऐसे कर। तो परिनिष्ठता में अनन्यता में कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ रहा है? बहुत बार लोग सोचते हैं कोई गृहस्थ आश्रम चले गए तो अब मतलब भक्ति बंद और सारा कुछ कहानी खत्म, बंद, ऐसे कैसे हो सकता है? प्रभुपाद जी ने मठ स्थापित नहीं करी, सोसाइटी स्थापित करी, अंतर समझाइए। मठ स्थापित नहीं किए हैं, सोसाइटी स्थापित करिए, क्या अंतर है? गौड़िया मठ और गौड़िया सोसाइटी में अंतर क्या है? माइक पे बोलिए। अच्छा भाई सही बोल रहे हैं आप, अरे थोड़ो मत भाई, बहुत महंगा माइक है, बोलिए ऑन है।
सोसाइटी के अंदर सारे लोग रह सकते हैं,
यस, और मठ में केवल ब्रह्मचारी सन्यासी रह सकते हैं, मठों की भी आवश्यकता है लेकिन केवल मठ स्थापित नहीं किए प्रभुपाद ने, इसीलिए सोसाइटी बहुत जरूरी है। और सोसाइटी में सबका अच्छा सुदृढ़ भक्त होना बहुत जरूरी है, तभी सोसाइटी हमारी स्ट्रांग रहेगी। तो यानी सोसाइटी में हर भक्त अगर हो जाए, परिनिष्ठ हो जाए, कृष्ण पर हो जाए, मत पर हो जाए, तो बहुत अच्छी बात होगी, ये लक्ष्य होना चाहिए। आज ही महाराज जी बात समझा रहे थे ना, कैसे हमें भक्तों को धीरे धीरे करके इस स्तर पर लाना है ताकि वह कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा जागृत कर ले, ठीक है। तो यानी अन्य कार्य करते हुए भी वह कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, जैसा मैंने तुम्हें पहले समझाया था इन शब्दों से, अर्थात 9वें अध्याय का श्लोक है, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम्। थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं, यत करोषि मतलब जो कुछ भी करते हो, खाते पीते सोते जो कुछ भी हो कृष्ण के लिए करो, इसको हम समझा चुके हैं, इसमें समझाएंगे नहीं। यदश्नासि मतलब जो भी कुछ खाओ, प्याज लहसुन चाय, नहीं ये सब नहीं, यद जो यद भाई इसमें तो लिखा है ना यद अशनासी जो तुम कुछ खाते हो मुझे अर्पित करो दशरथी प्रभु दीजिए खंडन करिए नहीं नहीं शिवम कृष्ण को बोलो शिवम हाँ हाँ बताइए इसमें लिखा यद यद अशनासी जो खाते हो मुझे समर्पित करो तो क्या दिक्कत है प्याज लहसुन को हम अर्पित करेंगे चाय अर्पित करेंगे
वो शास्त्र में नहीं
हाँ हाँ बोलिए हाँ आवाज आ रही
है उसके बारे में शास्त्र में मना किया गया ना खाने
कहाँ मना किया है
भगवत गीता में
भगवत गीता में तो लिखा नहीं प्याजम लहसुनम नो प्याजनम नो लहसुनम नो चायम
अच्छा
तो भगवत गीता में तो लिखा नहीं भगवान ने लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तो चाय तो पत्ते से आती है ना अब प्याज लहसुन भी मांस नहीं है
तो आपने इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं
क्योंकि भगवान ने नहीं इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ ना भगवान को समर्पित कर दूंगा ना प्याज लहसुन का बढ़िया छोला बनाएंगे यस भगवान ने ये भी बताया है जो बहुत पंजन चीजें हैं जो सड़ी हुई चीजें हैं और खराब चीजें हैं और इसमें वर्णन किया था ना तमगुण रजोगुण के आहार का जो बहुत पंजेंट है बहुत महक वाली होती है प्याज से तो आंसू आ जाता है आपने महसूस किया होगा जब खाते रहे होंगे तो ये सारी चीजें रजोगुण में तमगुण में होती है इसको भगवान को हम समर्पित नहीं कर सकते ठीक है यह जुहूसी का अर्थ क्या है जुहूसी को भूल रहा हूं मैं ये जुहूसी जो देते हो यू गिव अवे मुझे याद नहीं आ रहा है ऑफरिंग जो क्या है उसका अर्थ जुहूसी मुझे याद नहीं आ रहा सारे सारे स्कॉलर भूल गए चलो ददासी का तरह समझ में आता है कुछ दान करते हो तो कृष्ण के लिए दान कीजिए या तपस्या से मतलब व्रत तपस्या करते हो कृष्ण के लिए करो ग्रहण करना होता है देखिए देख करके बताइए कि फिर उस हिसाब से मैं गड़बड़ हो जाऊंगा नहीं तो अब गीता में देखिए गीता है किसी के पास हाँ आपके हाथ में ही गीता है 9.27 जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं जरा देख लीजिएगा जुहूसी का अर्थ क्या है ठीक है इत्यादि यानी 9.27 के हिसाब से इस प्रकार से अगर करते हो तो आगे आप जानते हो भगवान क्या बोलते हैं शुभाशुभ फलैरेवम मोक्ष से कर्म बंधनाय संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम उपैशसी तुम इस प्रकार से शुभ और शुभ दोनों कर्मों के फलों से मुक्त होकर के मेरे पास आ जाओगे अर्थात क्रियाओं को मुझे ये इंटरेस्टिंग लाइन है जरा देखिए अर्थात क्रियाओं को मुझे समर्पित करने के बाद उन क्रियाओं को करो ना कि उन्हें करने के बाद उन्हें समर्पित करो समझ में आया ये थोड़ा सा डाइसी है कोई व्यक्ति बिजनेस कर सकता है लेकिन कृष्ण से प्रेम नहीं है कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है बिजनेस का फल वो कृष्ण को समर्पित करता है काम कर दिया उसके बाद फल समर्पित कर रहा है तो यह है कर्मयोग लेकिन अगर क्रिया का उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना है तो वह यहां पे भक्ति योग हायर लेवल का भक्ति योग है एक्चुअल भक्ति योग कि क्रिया ही कृष्ण के लिए की जा रही हाँ वो क्रिया ही समर्पित है देखिए एक है क्रिया का फल समर्पित करना तो बिजनेस कर दिया कुछ पैसा आ गया हम भगवान की सेवा में लगा दें ठीक है लेकिन है कि क्रिया ही कृष्ण को समर्पित कर रहा मैं कृष्ण के लिए ही कर रहा हूं इसी चीज को भागवत में बोलते हैं श्रवण कीर्तनम वाला श्लोक जो है उसमें लास्ट में आता है क्रियते भगवती अधा अधा मतलब सीधे भगवान के लिए करना श्रवण कर रहे हैं भगवान का श्रवण करना कीर्तन कर रहे हैं भगवान का कीर्तन करना ये नवधा भक्ति है शुद्ध भक्ति सूक्ष्म पॉइंट है नहीं समझ में ये समझ में आ रही बात क्रिया ही कृष्ण के लिए है यहां पे यत करोशी मुझे समर्पित करो मेरे लिए करो माइक पे बोलिए कुछ बोलने में सुनाई नहीं पड़ रहा माइक पे बोलिए नहीं तो हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा हाँ आपको जोशी मिला नहीं अब तक 9.8 हाँ क्या
तो बता रहा हूँ जोशी का अर्थ है अर्पित करना
हाँ मुझे जो भी कुछ भी अर्पित करते हो यानी कि मैंने सुना है भक्त लोग एक्चुअली धोती कुर्ता जो होता है उसको भी भगवान को समर्पित करना चाहिए ऑल्दो मैं अभी करता नहीं हूँ बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस हाँ भगवान को छुआ करके करना चाहिए आपकी कृपा से प्राप्त है जो कुछ भी ऑफर करते हैं ठीक है हाँ जिसमें जैसे फूल भी आ सकता है गार्लैंड भी आ सकता है खाने के अलावा बहुत सारी चीज भगवान को हम समर्पित कर सकते हैं ना ये कंठी माला भी हम समर्पित करते हैं जीवन भी कंठी माला भी समर्पित करते हैं ठीक है तात्पर्य को पढ़िए कौन हमारे अच्छे रीडर हैं दशरथी प्रभु स्टैंडर्ड रीडर है हमारे यस पढ़िए
जब मनुष्य कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता
आप ही समझाइए क्या अर्थ है समझ में नहीं आया मुझे अभी आपने बता दिया था मई सन्ने से हाँ तो वही बताइए कि
जब
एक भक्त जो है कार्य करता है वो सारे कार्यों को कृष्ण के लिए ही करता है, कृष्ण के लिए क्रिया करता है।
हाँ,
उसका सोना उठना जगना जो भी काम है वो उस कृष्ण के लिए है।
हाँ, और अब देखिए प्रायः कर्मी लोग किस लिए उठते हैं सुबह?
अपने इंद्र भोग,
अपने तृप्ति के लिए, बिजनेस करने जा रहे हैं, सब करने के लिए। और भक्त लोग क्यों उठते हैं?
भगवान की प्रसन्नता,
भगवान की सेवा के लिए, बस सिंपल। स्वामी का भावताग भी है बस। जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, एक पत्नी उठती है ताकि पति की सेवा करे, बच्चों की सेवा करे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। उसी तरह से भक्त उठते हैं ताकि कृष्ण की सेवा करें। इसलिए भगवान का विग्रह है कि सेवा से बहुत ये भावना आ जाती है कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण का दास हूँ, ऐसे करके। अच्छा, कृष्ण का दास बनने से फायदा क्या है? इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? आप ही बताइए, माइक को आपको आपसे पूछता हूँ सारे प्रश्न।
एक तो
आज मैंने सुबह क्लास में बहुत जबरदस्त बात बताई थी चैतन्य भागवत से, किसी को याद है? कृष्ण का दास बनते हैं तो क्या होता है?
यमराज भी हमें प्रणाम करते हैं।
एक ये तो है, और भगवान उसके दास बन जाते हैं। मैं ये लीला बता के ही मानूंगा। जब महाप्रभु गया जाते हैं तो ईश्वरपुरी से मिलते हैं, उनसे दीक्षा भी ले लेते हैं। कोई एक दिन बाद, दो दिन बाद छोड़ करके महाप्रभु अपना खाना बना लिए, बना रहे होते हैं तो ईश्वरपुरी आ जाते हैं। तो एक ही व्यक्ति के लिए खाना बनाए तो सारा खाना ईश्वरपुरी को दे देते हैं। ईश्वरपुरी कहते नहीं, हम लोग दोनों मिल बांट के खा लेते हैं। नहीं नहीं, सब कुछ अपना ईश्वरपुरी को दे देते। इतना सुंदर मैं पढ़ रहा था, मेरा हृदय बहुत गदगद हो गया। कृष्ण अपने सेवकों से कितना प्रेम करते हैं। और एक्चुअली कैसे आए थे पता है? वो भक्त भी अद्भुत थे, वो हरि नाम में मत थे। मत समझते हैं? वैसे मैं सोच रहा था, मैं खाली कल्पना कर सकता हूँ, किसी शराबी मत होता है ना शराब में, ऐसे हरिनाम में मत होते, ऐसे करके वो आ रहे हैं और उनसे वो मिलते। बहुत सुंदर मुझे लगा। और इतनी देर में लक्ष्मी देवी ने अपना काम कर दिया, कुकिंग चालू हो गई, अलक्षित रूप से महाप्रभु के लिए कुकिंग फिर से बन के आ गई, फिर प्रसाद पाएंगे। कितना प्रेम करते हैं भगवान अपने। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। तब मुझे बहुत अच्छा आया, दास बना ही लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, मतलब लगा लीजिए अपनी कंपनी में, बहुत सुंदर है। कितना सुंदर, बहुत प्रेम, दोनों लोग एक दूसरे को जीते जाते हैं। भक्त की इच्छा होती है कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण जाते हैं अपने भक्तों की सेवा करना। खैर पढ़िए।
स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता, उसे चाहिए,
जोर से बोली, हाँ,
उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
छोटा सा की पॉइंट कि भगवान ने बोला है, यह ज्ञान जो दूसरों को देता है वो मुझे प्रिय है। हमें और कौन सा ज्ञान देना है? और कोई ज्ञान नहीं देना है, यही ज्ञान देना है। क्योंकि हमें दूसरों को प्रसन्न नहीं करना, हमें कृष्ण को प्रसन्न करना। प्रभुपाद जी देखिए, इसीलिए कुछ बोले ना, मेरी एक ही योग्यता है कि मैंने कुछ परिवर्तन नहीं किया। तो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ और नहीं बोलना है, केवल कृष्ण भावना की ही फिलॉसफी बोलनी। और जो लोग सिंसियर होंगे उससे आकर्षित हो जाएंगे अपने आप, और कृष्ण भी उससे प्रसन्न होंगे। देखिए ये बात हमें हृदय में बार बार करनी चाहिए। मान लीजिए हम कीर्तन भी कर रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, मैं आपके लिए गाऊं। आप देखिए प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण क्यों आकर्षित लगता है, इज़न्ट इट? पूरा दिन बसता रहता है, हम बोर नहीं होते। तो यही कारण है कि हम आपके लिए गा सकें, हृदय से आपके लिए कथा कर सकें, आपको प्रसन्न करने के लिए कर सकें। जैसे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, प्रसिद्धताम में भगवान सात्वताम पति, मैं कथा बोलने जा रहा हूं उसे सात्वत पति कृष्ण प्रसन्न हो जाए। ये भावना अगर आ जाए हमारे हर कार्य में तो आपको दिखेगा कि हर भक्ति का कार्य पूरा चेंज हो जाएगा, इक्वेशंस पूरी चेंज हो जाती हैं, बहुत जल्दी भक्ति का लाभ प्राप्त होगा, चाहे कुछ भी कर रहे हैं भक्ति में। पढ़िए।
वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का,
थोड़ा सा जोर से पढ़िए, हाँ,
कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है।
यानी देखिए हम हरि नाम कर रहे हैं, कभी मन लगता है कभी नहीं लगता, लेकिन भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, हमें करना है, अपना अपना प्रयास लगा रहना चाहिए। देखिए बहुत अच्छी बात थी, गिरिराज महाराज बोल रहे थे, ट्रेनिंग है क्या भाई? बहुत, मैं ऐसे नहीं बोला, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, ट्रेनिंग है सिंसियर बनने की, ट्रेनिंग बस, और कोई ट्रेनिंग नहीं। सिंसियर मतलब समझते हैं, विदाउट वैक्स। सिंसियर मींस होता है सिन, मतलब विदाउट, सियर मतलब विदाउट वैक्स। तो महाराज बता रहे थे कि पहले जमाने में यूरोप में वो लोग मार्बल बेचा करते थे, तो मार्बल आप जानते हो पानी मारने से उसकी जो है गंदगी दिखाई पड़ती है, तो वो लोग क्या करते थे, उसके ऊपर वो वैक्स लगा देते थे, जो क्रैक होता है ना मार्बल में उसमें वैक्स लगा देते थे। तो जब वो गर्मी आती थी तो वैक्स पिघल जाता था और उसके क्रैक दिखाई देखने पड़ते थे। तो उसी प्रकार से सिंसियर मतलब बिना वैक्स के, बिना अपने क्या कह सकते हैं, और भगवान के सब तो हमारे अंदर बाहर सब देख ही रहे हैं, तो भगवान के सच्चे दिल से भक्ति की जाए। मैं इसे बहुत ज्यादा बोलना चाहता हूं, लेकिन एक बात है, भागवतम का भी मैं श्लोक पढ़ रहा था बहुत सुंदर 11वें स्कंद का, कि भगवान का दास वही व्यक्ति बन सकता है जो सच्चे दिल से भगवान का सेवक बनना चाहता है। समझ में आ रहा है? वाकई वो कृष्ण का दास बनना चाहता है, कृष्ण की सेवा करना चाहता है। और ये कहां से आता है? श्रीमद् भागवतम को सुनने से। जब हम देखते हैं या चैतन्य भागवत सुन रहे हैं कैसे भगवान प्रेम कर रहे हैं अपने भक्तों से, तो हम भी काम त्यागी मतलब अपनी भौतिक इच्छाएं त्याग कर कृष्ण की भजन सच्चे दिल से करते हैं। और कृष्ण इस बात को रेजिस्ट नहीं कर सकते। रेजिस्ट का मतलब समझते हैं आप? मतलब हाँ नहीं, विरोध नहीं, मतलब उसको इतना बड़ा उनको लुभाती है बात की ये जीव मेरे को चाहता है। तो हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं अल्टीमेटली वह कृष्ण को आकर्षण करने के लिए करना है, जो भी साधना हम करते हैं। ये बात बहुत देखिए, सच्चा दिल आप दिल आपके पास है, और दिल में हमें सच्चाई रखनी है या झूठा रखना है वो हम जानते हैं। कोई बस सुन करके हमें अपना दिल को सच्चा रखने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, सच्चे दिल से पालन करता है। यस।
अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहे थे, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे? यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा।
बहुत सुंदर बात है। वैसा होगा मतलब कैसा होगा? भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन क्या बोल रहे हैं, उन्हें क्या अनुभव हो रहा है? सारे प्रश्न आपसे करता हूँ।
करिष्य वचनम तव, मतलब
ये सही है, वेरी नाइस। करिष्य वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार, वेरी नाइस। मैं ये श्लोक सुन रहा था, नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा तत्प्रसादाद मयाच्युतः। मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी बुद्धि सही हो गई, मैं समझ में आ गया मैं आपकी प्रसन्नता के लिए मेरा अस्तित्व है। और मैं उसके बाद बोलते हैं करिष्य वचनम तव, बहुत सुंदर बात। तो यही चीज हमारे संग भी होगी, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये भगवान के वचन सुन करके समझ में आ जाएगा। एक और बात है, बद्धात्मा या हम सबके जीवन में कृष्ण सबसे पहले शास्त्र के रूप में आते हैं। यस नो? और हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए और रोज आने चाहिए। भक्तों के माध्यम से आते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन भक्त आके क्या बोलते हैं आपको? हरे कृष्ण मंत्र कौन से शास्त्र में है? कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में भाई एस सी वर्मा हाँ पढ़े हैं आप लोग तो उसमें नहीं है, वो शास्त्र ही बोलते हैं, उपनिषद का मंत्र है, चाहे वो हरे कृष्ण मंत्र बोले चाहे भगवान का प्रसाद दे रहे हैं, लेकिन मेन बात है श्रुति कथाम सुनते हैं जब हम लोग शास्त्र से, भक्तों के मुख से, तब हमारा जीवन में हम समझ में आता है कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। कोई विरोध है? हाँ बोलिए।
साधु के माध्यम से, क्योंकि नया भक्त हूं मैं, तो मुझे तो शास्त्र शुरू में समझ में ही नहीं आएगा, तो मतलब साधु के मुख से ही सुनूंगा।
एग्रीड, लेकिन साधु बोलेगा क्या?
तो शास्त्र का ही तो साधु
समझ रहे ना, जो शास्त्र की वाणी है, शास्त्र का आज्ञा है, वही तुम्हारे सामने आ रहा है ना। ये बात ऑब्वियसली हमें भक्तों के महत्व को नहीं समाप्त कर दे रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं कि भक्त भी हमें भगवान का ज्ञान दे रहे हैं, भगवत गीता भागवत का ही तो ज्ञान दे रहे हैं, यही तो भगवान यहाँ पे गीता में भी बोल रहे हैं। तो यानी कि नियमित रूप से श्रवण करना, समझना, बुद्धि को उसमें लगाना, ये बहुत जरूरी है। अब आपको और मैं इसमें बताना चाहता हूं, भक्ति में आगे बढ़ने की एकमात्र योग्यता है शास्त्रीय श्रद्धा। एक बार बोलिए कृष्ण मोहन प्रभु, क्या हुआ? कुछ भी नहीं लगा, कुछ हुआ। और आज हमने श्लोक में सुना था क्या, यह नाम ग्रहणन, कृष्ण बोलने से पहले क्री बोल रहे हैं तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन आपके बैंक अकाउंट में सब जा रहा है। इसलिए इन सबको कान खोल करके बार बार सुनना जरूरी है ताकि हमारी मति स्थिर रहे। जैसे हम सुबह ही खाते हैं ना ब्रेकफास्ट, क्यों शिवम कृष्णा, एक ही बार खाते हैं आप? एक ही बार खाते हैं तो एक ही बार कथा सुनना चाहिए, है ना? हाँ, जैसे दो बार खाते हैं, तीन बार खाते हैं, कोई जो चार चार बार खाता है, ऐसे कम से कम दो बार जरूर खाना चाहिए ताकि हमारी मति शास्त्र के अनुसार चले। ठीक है, ओके, पढ़िए।
इस श्लोक में मतपरा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता।
ये बहुत टफ चीज है। आज अपने महाराज की बात सुनी थी, जबरदस्त महाराज बोले। मैं उन्होंने कहा कि हम सच्चे भक्त तब बनेंगे, मैं पैराफ्रेस कर रहा हूं, जब हम लोगों से ऐसे डील करें जैसे मैं कृष्ण से डील कर रहा हूं। मतलब जैसे मान लीजिए मेरे सामने अनुपम कृष्ण ही कृष्ण बैठे, अब मैं कैसे बर्ताव करूंगा? दाशरथि स्वरूप दास नहीं बैठे, दाशरथि स्वरूप बैठे, आप भगवान नहीं बन जा रहे हो, लेकिन भगवान हर जीव भगवान को बहुत प्रिय है। मैं तो सुन रहा था, मेरी तो अंदर से तबीयत खराब हो रही थी, मैंने कहा बाप रे तो बहुत अपराध हो जाता है, हे यहां नहीं आ सकते तुम, हे गुलाब जामुन नहीं मिलेगा, हे ऐसे कर देते, कैसे डांट देते हैं हम लोग। इस संबंध में एक संस्था है जिनके यहाँ पे अस्पताल है, इस मामले में बहुत बड़ा कोटेशन लिखा हुआ है, पार्थ कृष्ण प्रभु मुझसे पूछ रहे थे, हम लोग दोनों गए थे, कि जो कोई भी पेशेंट आता है उसमें आप श्याम सुंदर को देखिए। मैंने कहा बात बिल्कुल सही है, एक्चुअली भागवत की ही बात, सबके हृदय में भगवान को देखना चाहिए, किसी के प्रति भी अपराध नहीं करना चाहिए। मेरे महाराज इस बात में बोल रहे थे कि डू नॉट मिसट्रीट एनीवन, अगर आपको किसी को बोलना है आप आश्रम भी छोड़ के जाइए तो कहिए प्रभु जी हम आपको क्षमा कीजिएगा, हम आपको रख नहीं सकते, आप जाइए। बड़े टफ है, बड़ा टफ है सच्चा भक्त बनना, बहुत टफ है। अनुद्वेग करम वाक्यम, किसी को उद्वेग न देना, किसी को भी उद्वेग देते हैं चाहे वो अभक्त भी क्यों ना है तो हमारी भक्ति का ग्राफ कम होता है, खत्म नहीं हो सकती लेकिन ग्राफ नीचे आ जाता। तो खैर मैं क्या कहना चाहता हूं उस लाइन पे कि हम ये देखें, हम अगर इस व्यक्ति से कुछ इंटरेक्शन का क्या बोलेंगे आदान प्रदान कर रहे हैं तो क्या ऐसे कृष्ण प्रसन्न होंगे, ये देख सोच लेना चाहिए। बहुत मुश्किल है, देखिए मैं आपको बोल रहा हूं उसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा हर परिस्थिति में इसको अप्लाई कर पाता हूं, लेकिन कॉन्शियस होना बहुत जरूरी। आज बहुत अच्छा बात बोले, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, इसे महाप्रभु प्रसन्न हो जाते और उसे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
एक बात है कि अगर जब तक ये स्थिति ना आए तब तक एक डिस्टेंस बना के रखना क्या उचित है?
बिल्कुल नहीं, भक्तों से डिस्टेंस बनाना नहीं चाहिए, भक्तों के संग में ही हम सीख पाएंगे। देखिए हम अगर डिस्टेंस बना के चलने लग जाएंगे तो फिर हम किसी ना किसी से जरूर बात करेंगे। ऐसे तो नहीं है कि हम लोग बोलते थे मैन इज नॉट बोर्न ऑन एन आइवरी टावर, हम खंबे पे खड़े होकर नहीं जी सकते।
जब आपकी साधना हो
एक मॉर्निंग प्रोग्राम, साधना के समय हमें थोड़ा बातें करनी होती
है। मॉर्निंग प्रोग्राम आपने अटेंड किया, अब उसके बाद आपको शास्त्र पढ़ना है तो कुछ समय
देखिए समझिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें कोई डाउट नहीं बोल रहा हूँ, उसमें कोई विरोध नहीं है, मैं खाली बोल रहा हूँ जब भी हम किसी से आदान प्रदान कर रहे हैं चाहे वो अभक्त हो चाहे वो भक्त हो, ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि मेरी डीलिंग क्या कृष्ण को प्रसन्न कर रही है, और उसको सीख लेना चाहिए शास्त्र के आधार पे कि वो क्या कृष्ण को प्रसन्न करता है। शास्त्र में स्वयं भगवान बोलते हैं न चान्येषु, क्या श्लोक है, न तद भक्तेषु न चान्येषु तद भक्तः प्राकृतः स्मृतः। भक्तों से कैसे बर्ताव करना है और अन्य लोगों से कैसे बर्ताव करना है उनको हम समझ में नहीं आता, ये प्राकृत भक्त है और प्राकृत भक्त को नाम रुचि भी प्राप्त नहीं होती। उसी प्रकार से हम क्या सीखते हैं, नाम रुचि का क्या फॉर्मूला है, यथा यथा सकल सम्मान कोरे ते शक्ति देहो नाथ जथा जथा तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हता। यथा योग्य सबको सम्मान देना, जब मैं कर पाऊंगा ये शक्ति मुझे प्राप्त होगी तब मेरे अपराध नष्ट होंगे, तब नाम रुचि प्राप्त होगी। मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा, मैं अपने को शिक्षा दे रहा हूं, ये बहुत टफ श्लोक है, शक्ति चाहिए इसके लिए, सबको सम्मान देना, इवन जो हमारी निंदा कर रहा है उसको भी सम्मान देना। तो ये खैर सब चीजें हमें कृष्ण को प्रसन्न करने वाली बात है, ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी,
जैसे मान लीजिए किसी को अपने अंदर ही फाइंडिंग फॉल्ट दिखता है कि मेरा ही अंदर है कि लोग ज्यादा मेरे करीब आएंगे तो मैं कहीं ना कहीं गलत बातें बोल जाऊंगा,
हाँ तो सुधारना चाहिए उसको।
तो अब
देखिए अकेले
सुधार नहीं रहा तब तक, तो अगर मतलब कि अगर कोई आया 10 आदमी कोई बातें बोले
नहीं, अगर आपके पास लोग आएंगे तो उन्हें भगवान के बारे में बताइए, अगर शास्त्र पढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए आप लोग हाथ खड़ा करेगा, आप लोग कितने लोग शास्त्र रोज हाथ खड़ा, ऐसे नहीं हाथ खड़ा करना है, आप लोग शास्त्र लोग नियमित कितने रूप से पढ़ते हैं लोग, 1 2 3 4 5। अब ये बताइए कि आप में से किसी को कोई भी प्रेरणादायक बात रोज नहीं मिलती, एक लाइन क्या आपने देखा है मेरे को, मैं बाथरूम में लोगों को पढ़ के बताता हूं, आपको पता है श्रीधर स्वामी क्या बोलते हैं, हो सकता है उसे कुछ समझ में नहीं आए लेकिन मुझे मेरा रिपीटेशन हो जाता है। क्या आप लोगों के यहाँ पे कोई मित्र नहीं जिनको आप बता सकते हो देखो प्रभु जी आज आपने मैंने पढ़ाई सीखा, इसलिए याद नहीं रहता। कुछ एक लाइन दो लाइन कुछ आपको अच्छा लगे, कोई भक्त मिले उसे अच्छी बात बताओ, उससे उसकी भक्ति में प्रेरणा आगे बढ़े, क्या नुकसान है आपका? लेकिन चुपचाप बैठे रहेंगे हम लोग तो फिर कैसे काम चलेगा, सीखेंगे कैसे हम लोग? इससे हमारा शुद्धिकरण होता है, भगवान से प्रसन्न होते हैं, भगवान की कृपा हमको मिलती है। इससे बिल्कुल स्पष्ट भगवत गीता का जो श्लोकी है उसमें बता रहे हैं भगवान की हमें क्या करना है। भगवान बोलते हैं जब भक्त साथ में आकर के चर्चा करता है मुझे बड़ा प्रसन्न होता है, मैं बहुत खुश होता हूँ। तो इसी प्रकार से हम लोग गोष्ठी तो करते हैं, अन्यथा भी भक्त लोग मिले तो चर्चा करना चाहिए। आज महाराज बोल रहे थे भक्तों को मिल करके क्या कहते हैं वेदर क्या बोले, मौसम की चर्चा नहीं करना चाहिए, आज टेम्परेचर क्या है, करते हैं इस तरह से लोग चर्चा। इस ऑल प्रजल पर ठीक है, ये कृष्ण को प्रसन्न नहीं करता। अगर महाप्रभु की बात सुनेंगे तो और हैवी, महाप्रभु कहते हैं मुझसे प्रीति है तो कृष्ण के अलावा कुछ बोलो मत, नाम के अलावा और कृष्ण के अतिरिक्त कोई बात मत करो। और अगर नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं उसके विपरीत तो बोलो महाप्रभु से प्रीति नहीं है। तो इसलिए हमको सुन करके अपने को लाइनअप करना चाहिए। आगे पढ़िए,
जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए, कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है।
बहुत सुंदर ये लाइन, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गंभीर है। ना तो भक्त मुक्त होना चाहते हैं ना भक्त भोगी है, जिस अवस्था में है जिस शरीर में है ना तो उसे बाहर निकलना चाहते हैं ना उसमें रहना चाहते हैं। कृष्ण ने शरीर में रखा है, एक विशेष सेवा में नियोजित कर रहे हैं, अपने सच्चे दिल से मैं प्रयास कर रहा हूं करने के लिए। बहुत गंभीर चीजें हैं अगर आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। आगे पढ़िए,
और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है, यही पूर्ण कृष्ण भावना अमृत है।
अर्थात जैसे मैं प्रीचिंग के लिए जा रहा हूं तो किस लिए जा रहा हूं, कृष्ण से प्रसन्न होंगे। सिंपल, कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, भगवान के बर्तन मांजने जा रहे हो, मुझे कितना बड़ा मौका मिल रहा है कृष्ण के बर्तन मांजने का। गोलोक में आपको मिलेगा तो आप कहेंगे नहीं मुझे स्वभाव कुछ और है, गोलोक में आपको सेवा मिल जाए। चलिए एक प्रश्न करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी की गोलोक में क्या सेवा है, दूध गर्म करने की? अरे इतने बड़े आचार्य, बस इतनी सी सेवा? तो कोई भी सेवा इतनी सी सेवा नहीं होती। बस यह कि दिक्कत यह कि अभी प्रेम नहीं प्राप्त है प्रकट रूप से, इसलिए आनंद नहीं मिलता। वो बर्तन घिसने भी भगवान के ठाकुर जी की खूब आनंद आता। कोई भी सेवा कीजिए। पढ़िए आगे,
उसे इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है, यही पूर्ण कृष्ण भाव है।
थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ।
किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए।
समझ में आ गया, प्याजम लहसुनम चायम नहीं अर्पित कर सकते।
इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावना अमृत की भक्ति में नहीं आता, मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है।
यही बात जो हमने टीका में पढ़ रहे थे, कर्म सीधे कृष्ण को समर्पित होना, कृष्ण के अनुसार कर्म करना है। यस,
कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणिक गुरु से प्राप्त होता है,
और गुरु परंपरा के माध्यम से आपकी सेवा कृष्ण के पास जा रही है। ये सोचा कभी आपने? सोचते हो आप भी मंडिटी में सेवा कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे? कभी सोचा आपने? हमारे महाराज बता रहे थे, कह रहे थे हमारी क्या योग्यता है हमारी इस बद्धावस्था में कि हमारी सेवा सीधे राधा रानी के पास जाए। श्रीनाथ प्रभु जरा बोलिए, उनको दीजिए माइक, बोलते नहीं क्यों? आपको लगता नहीं आपका सौभाग्य है कि आपका बनाया हुआ भोग सीधे राधा रानी के पास जा रहा है, फिर राधा रानी कृष्ण को दे रहे? कभी सोचा आपने इस तरह से? नहीं सोचा? विचार कीजिए, कल आप इस भावना से कीजिएगा, कल इस भावना से कीजिए कि मैं कितना बड़ा भाग्य है जो वहां पे गए माता यशोदा की असिस्टेंट्स को सेवा मिल रही है। यशोदा मैया खाना बनाती हैं कृष्ण के लिए, बाकी लोग असिस्ट कर रहे हैं। ऐसे आप श्रीमती राधा रानी को असिस्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आपको लग रहा हो मैं बना रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी की जो कुकिंग है वो एक्चुअली राधा रानी करती है, हम लोग केवल असिस्ट करते हैं। हमेशा एक बात का भाव ये होता है कि मेरे गुरु महाराज सेवा कर रहे हैं, मैं तो केवल उनका असिस्ट कर रहा हूं, आरती करते समय भी मैं कुछ नहीं कर रहा। प्रचार में भी भावना होती है, महाराज कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कर रहे हैं, हम तो केवल उनको असिस्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और हमारी सेवा इस गुरु परंपरा के द्वारा भगवान के पास जाती है श्रीमती राधा रानी के थ्रू। कितना बड़ा कृपा है, अनइमेजिनेबल। जैसे आप लोगों को याद हो, अब याद नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, अन्यथा अभी आप लोगों के लिए प्रश्न है। जब भगवान कृष्ण ने मणिग्रीव और नलकुवर को पेड़ के रूप में उद्धार कर दिया था, पेड़ के रूप में उद्धार करने से पहले कृष्ण ने क्या सोचा था? बहुत महत्वपूर्ण बात है। पार्थ प्रभु के माइक पास में ही, इसी से संबंधित है। हाँ जी,
क्योंकि मेरे भक्त ने प्रॉमिस किया था।
हाँ,
बेन का उद्धार मेरे हाथों होगा,
ये बिल्कुल सही बात है। और एक और बात बोली थी उन्होंने बोला था कि मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि समझ गए? ऐसे कोई भगवान को खास मतलब नहीं होता बद्धात्माओं से। खुद आपको लग रहा है विश्वास नहीं हो रहा, आप कृष्ण के वचन देखिएगा भागवत में, कहते हैं मुझे इनसे, मुझे तो अपने भोगों में लगे कोई मतलब नहीं, लेकिन नारद मुनि ने बोला है, नारद से कनेक्शन हो गया इसलिए मैं उद्धार करूंगा। एकदम स्पष्ट है, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर कृष्ण भक्त में कृष्ण बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेकर के जब कृष्ण की हम सेवा करते हैं तो इस प्रकार से बहुत जल्दी प्रगति होती है, कृष्ण हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। आगे पढ़िए, अनंत कृष्ण प्रभु, कौन कोई भी पढ़ सकता है, जिसके लास्ट लाइन्स हैं।
अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए।
गुरु का पहला आदेश क्या था, आपके गुरु जी ने पहला आदेश क्या दिया आपको प्रभु जी?
16 माला करना।
हाँ, पहला कर्तव्य है 16 माला बढ़िया से होना चाहिए, है ना? यस, आगे।
यदि किसी को प्रमाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावना में जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है।
क्या है वो सिद्धि?
कृष्ण प्रेम।
और उसके बाद क्या होगा?
भगवान के धाम में और भगवान की सेवा करेंगे।
और कहीं कोई कमी है यहाँ पे, किसी को गुरु का आदेश नहीं प्राप्त हो? 16 माला करना, 4 नियम का पालन करना और नम्रता से इस्कॉन में सेवा करना सभी को प्राप्त है। अब हमको ये देखना है कि हम उसको कितना दृढ़ता से पकड़ के करते हैं। वो हम सबको अपने हृदय से सच्चे दिल को, सच्चे दिल हमारा है, दिल हमारा है, दिल और दिमाग हमें लगाना है। ठीक है, ओके, कोई प्रश्न है? चल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।